प्रभु पदा जया प्रभु पदा प्रभु पदा श्रील प्रभु पदा चतुर हरि बोल हरि बोल परोग हरि बोल श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के 19वें अध्याय पर चर्चा चल रही है। इसके एक महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् स्विष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभिस्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यदद्भजतां शन्तनोति यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितां स्विष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभिस्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शन्तनोति यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितम् स्विष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम् तेना जनाभिस्मृतिमज्जन्मनः स्यात् वर्षे हरिर्यद्भजतां शन्तनोति
Thank you.
श्रेष्ठस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्। तेना जनाभिस्मृतिमज्जन्मनः स्यात्। यदि अत्र इस स्वर्ग लोक में न हमारा स्वर्ग सुख आवेशितम स्वार्गिक सुख भोगने के बाद जो कुछ भी शेष रहता है सुइष्टस्य पूर्ण यज्ञ का सुउक्तस्य वैदिक साहित्य के पठन का कृतस्य सुकर्म का शोभनम शेष कार्य तेन ऐसे कार्य से अजनाभे भारत वर्ष में स्मृति मज्जन्म भगवान के चरणों को स्मरण करने वाला जन्म न हमारा स्यात् हो वर्षे देश में। हरि ही श्री भगवान यह जिसमें भजताम भक्तों का शमतनोति कल्याण का प्रसार करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यज्ञ पुण्य कर्म अनुष्ठान तथा वेदाध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहें तो हम मनुष्य रूप में भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भारत वर्ष में जन्म लें। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारत वर्ष में आते हैं और यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। तात्पर्य, निसंदेह पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही स्वर्ग लोक में मनुष्य जन्म लेता है, किंतु वहां से उसे पुनः मर्त्य लोक में आना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यहाँ तक कि देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर लौटकर सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करना होता है, तो भी देवतागण भारत वर्ष की भूमि में आने की कामना करते रहते हैं। यदि उनके पुण्य कर्मों के फल का थोड़ा सा भाग भी बचा हो, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत वर्ष में जन्म लेने के लिए देवताओं से भी अधिक पुण्य करने पड़ते हैं। भारत वर्ष में स्वाभाविक रूप से मनुष्य कृष्ण भावना भावित रहता है, और यदि श्री कृष्ण की कृपा से वह आगे भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता रहता है तो वह कृष्ण भक्ति में पारंगत बनकर भगवान के धाम को सरलता से वापस जाकर अपने सौभाग्य का विस्तार करता है। वैदिक साहित्य में अन्य कई स्थानों में उल्लेख मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष की भूमि में आने के इच्छुक रहते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने पुण्य कर्मों के बदले में स्वर्ग लोक की कामना करेगा, अन्यथा देवता भी भारतवर्ष में आकर देह धारण करना चाहते हैं, जिससे इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में किया जा सके। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः जो पहले ही भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं, उनका कर्तव्य है कि वे शास्त्रों तथा गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करें तथा कृष्ण भावनामृत से पूर्णतया परिचित होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा का लाभ उठाएं। इस तरह कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ उठाकर श्री भगवान के धाम को वापस जाया जा सकता है। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में अनेक केंद्रों की स्थापना करके मानव समाज को यह सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे जन साधारण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शुद्ध भक्तों का संग कर सकें, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझें एवं अंत में श्रीधाम को वापस जाएं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय पर अब चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाइन अति नीचो चतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम नारद कंठयो सुरा।
हरे कृष्णा। इस अध्याय के प्रारंभ में पहले 8 श्लोकों में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह किम पुरुष वर्ष के निवासी भगवान रामचंद्र जी को अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, हनुमान जी इत्यादि जो वहां पर रह रहे हैं तो वे लोग अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और अब आगे वर्णन किया जा रहा है कि भारतवर्ष में जो भगवान के रूप भगवान के अवतार हैं उनकी प्रार्थना कैसे की जाती है और फिर भारतवर्ष का क्या महत्व है। तो भारतवर्ष में भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि हैं और इनको प्रार्थनाएं नारद मुनि इत्यादि अर्पण करते हैं। तो नारद मुनि बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं भगवान के प्रति। वो कहते हैं कि भगवान जब वो प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं तो वो कहते हैं कि आप सृष्टि स्थिति या प्रलय इन तीनों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही इसको बनाए रखते हैं और आप ही इसका संहार करते हैं। भगवान सीधे नहीं करते लेकिन वो स्वामी हैं। भागवत के 10वें स्कंद में इस बात को कहा गया है, यस्यांश अंश सभागे न, जिस जिनके अंश के भाग से विश्वोत्पत्ति लयोदय, विश्व की उत्पत्ति होती है, विश्व बना रहता है और समाप्त हो जाता है। तो भगवान सीधे नहीं करते लेकिन स्वामी हैं। तो यस्यांश उनके जो अंश हैं श्री कृष्ण के हैं महाविष्णु, तो यस्यांश अंश और महाविष्णु के जो अंश हैं ये भौतिक प्रकृति सभागे न, उनके जो भाग हैं तीन भाग तीन गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, विश्वोत्पत्ति लयोदया, विश्व की उत्पत्ति विश्व को बनाए रखना और इसका समापन, ये तीन गुण करते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि होता सब कुछ गुणों के द्वारा है। प्रकृतेः क्रियमाणानि, ये जो प्रकृति है ये क्रियमान है, ये चल रही है, किस लिए? गुणेः कर्माणि सर्वशः, गुणों के द्वारा। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में है, अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो ये सोचता है कि मैं करता हूं। अगर वो जान ले कि सब कुछ भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है तो कभी अहंकार में नहीं आएगा, कभी ये नहीं सोचेगा मैं कर रहा हूं, भगवान करा रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो नारद मुनि ये प्रार्थना करते हैं कि ये सृष्टि का पालन, सृष्टि को बनाना, वैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि का पालन सृष्टि को बनाते हैं, शिव जी संहार करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन ये सब भगवान की इच्छा से होता, इनके स्वामी भगवान हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, माया देवी आपकी ही इच्छा से ये कारागार ये जेल को बनाती हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप स्वामी हैं, सभी चीजों के स्वामी हैं। और फिर वो भगवान की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भले आप इस भौतिक जगत के स्वामी हैं भले आप इस जगत में बारंबार आते हैं और केवल आते ही नहीं हैं, इस जगत की इन दूषित चीजों को देखते भी हैं, लेकिन आप पर कोई प्रभाव नहीं होता, आप अप्रभावित रहते हैं। नारद मुनि भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को समझा रहे हैं कि जैसे भगवान सब चीजों को देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से छुपा है। भगवान साक्षी हैं, परमात्मा के रूप में हरेक के हृदय में हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि के रूप में हर स्थान पर हैं। तो भगवान सब देखते हैं लेकिन प्रभावित नहीं होते। इसी तरह एक भक्त को होना चाहिए, देखने से आंखों से वासनाएं हृदय में प्रवेश करती हैं। इसीलिए बिल्वा मंगल ठाकुर जब अपनी आंखों के द्वारा वासनाओं को वश में नहीं कर पाए तो उन्होंने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया कि देखूंगा ही नहीं, वासनाएं हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। हम सब के लिए ये अनिवार्य नहीं है कि हम लोग भी अपनी आंखों को फोड़ लें, सारे भक्त अंधे हो जाएं, वासनाएं नहीं आएंगी। वासनाएं तो आएंगी, इसीलिए मार्ग नारद मुनि बता रहे हैं कि जब देखें हम चीजों को, स्वाभाविकता है देखने से वासनाएं हृदय में प्रवेश करती हैं। इसीलिए तो देखिए सारी जो मीडिया इंडस्ट्री चल रही है, ये केवल दिखाने के लिए, कोई उसका पीछे तथ्य नहीं है, खाली खोखले उनके वायदे हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करते हैं कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये मार्केटिंग का जमाना है, इसलिए हम लोगों को भी भक्ति को अच्छी तरह मार्केटिंग करना चाहिए, अच्छे पैकिंग में होना चाहिए। देखिए बहुत दिमाग लगाते हैं ये इंडस्ट्री वाले, बच्चों के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके पैकेट हमेशा कलरफुल होते हैं। आपने देखा है कभी भी बच्चों के चिप्स का पैकेट सादा सफ़ेद रंग काला रंग कभी नहीं होगा, कोई उसमें कुछ नहीं है, बस एक पैकेट में है, नहीं, बड़े कलरफुल कार्टून्स ये वो उस पर बने होते हैं। क्यों? बच्चे आकर्षित होते हैं देखते ही, कलरफुल चीज़ें उस पर बच्चे, कुछ कार्टून बने हैं, मुझे ये वाला चाहिए, अंदर क्या है कुछ पता नहीं, कचरा भरा हुआ है लेकिन पैकिंग अच्छी है, मुझे ये चाहिए। तो इस स्थान ऐसा, तो देखकर आकर्षित होते हैं। बच्चे को क्या पता कि उसके अंदर जो चिप्स हैं, लेस या क्या पता नहीं क्या क्या नाम है आजकल, बच्चे को क्या पता वो क्या मेरे लिए अच्छा है या नहीं, बस उसको पैकेट अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर भावना वही रहती है, युवावस्था में एक सुंदर युवती के प्रति आकर्षण होता है, क्यों? पैकिंग अच्छी है ना। बचपन में चिप्स के प्रति क्योंकि पैकिंग अच्छी है, युवावस्था में सुंदर युवती, हरेक को एक सुंदर युवती से विवाह करना, क्यों? पैकिंग अच्छी है, अंदर क्या है? वही मलमूत्र भरा हुआ है और तो कुछ है नहीं, लेकिन वो पैकिंग अच्छी है इसीलिए हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। या फिर कोई धन की ओर, क्यों? धन बड़ा आकर्षण करता है, दिखने में हरा हरा अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन पहले सारे हरे हरे बेकार हो गए, पड़े रहे घर में, जलाने पड़े, वही बड़ा आकर्षित लग रहा था, अब उसको सोच रहे हैं कहाँ पर फेंकें। हमने सुना कई जगहों पर लोग फेंक रहे हैं, अभी एक मंदिर में किसी ने लाखों रुपए फेंक दिए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब आए यहाँ पर, इस मंदिर में भी कोई फेंकें। लोग शमशान में जाकर फेंक रहे हैं, कूड़े में जाकर फेंक रहे हैं, वो भी मुंह छुपाकर, क्योंकि आदेश ये है कि अगर किसी को कैमरे में देख भी लिया पैसा फेंकते हुए तो उसको पकड़ा जाएगा, तो मुंह छुपाकर आजकल सब फेंका जा रहा है काला पैसा। पता नहीं क्यों, यहाँ नहीं इतना बड़ा कमरा है, यहाँ आकर फेंकें कोई, तो वही चीज़ आकर्षित क्यों लगती है? वो बस देखने से, पैसा युवती या और कोई प्रकार कुछ नहीं है, केवल पैकिंग अच्छी है, बस यही नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि व्यक्ति भूल जाता है जिस शरीर के प्रति आसक्त है, वो है क्या शरीर? वो कहते हैं केवल मल मूत्र से भरा हुआ एक थैला है। और क्या है? देखिए हमारे शरीर में 9 द्वार हैं और 9 द्वारों से केवल गंदगी बाहर आती है ना। कितना बेकार शरीर है हमारा, लेकिन उसी के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता। तो नारद मुनि कहते कि भगवान सब देखते हैं लेकिन कोई प्रभावित नहीं होते। ये कला है, इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। इस जगत में रहना है तो ये कला सीखनी चाहिए कि हम चीजों को देखें। हम अंधे नहीं हो सकते, हम आंखें नहीं फोड़ सकते, हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना कहो, 3 बंदर कोई हो नहीं सकता। कैसे हो सकता? हम लोग सड़कों पे जाते, इतने बड़े बड़े विज्ञापन हैं, लोग हैं अलग अलग प्रकार के, कैसे आंखें बंद कर सकते हैं? तो कला सीखनी है कि देखें प्रभावित नहीं हो। कमल कीचड़ में रहता है, स्पर्श नहीं करता। इस कला को सीखना है। जब हम जगत में सुंदर चीजों को देखें जिससे हमारी आंखें आकर्षित हों, हमें सोचना चाहिए कि जिस कृष्ण ने इनको बनाया है, सुंदरता को, ये सुंदरता केवल कृष्ण की अंश मात्र है और मैं इतना आकर्षित हो रहा हूं, कृष्ण कितने आकर्षण होंगे, कृष्ण में कितना आकर्षण होगा। इससे हम प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हम देखे बिना तो रह नहीं सकते, आंखें तो फोड़ नहीं सकते। कोई सामने आ जाए तो हम आंखें तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये सोचना है कि अगर ये थोड़ी सी सुंदरता मुझे इतना आकर्षित कर रही है, कृष्ण की सुंदरता क्या होगी? जिसने बनाया इस सुंदरता को, वो कितना सुंदर होगा? ये हमें सोचना है। अन्यथा हमें ये सोचना है कि हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन इस जगत की हर श्रेष्ठ चीज कृष्ण की सेवा के लिए है, मेरे आनंद के लिए नहीं। तो इसीलिए देखना है और देखकर प्रभावित नहीं होना। और नारद मुनि आगे कहते हैं ये केवल भक्ति से हो सकता है, अन्यथा और कहीं नहीं। आप देखिए सारे जगत में जितने भी चीजें चल रही हैं देखने पर, मूवीज लोग देखने ही तो जाते हैं। मूर्ख हैं, पता है कि सामने दीवार है, कुछ नहीं है, पीछे से वो प्रोजेक्शन हो रहा है, लाइट आ रही है, मगर अंधेरा होता है और बड़ा सा वो चित्र चलता है। लोग लगता हाय हाय क्या होगा, वो हीरोइन पहुंचेगी कि नहीं, हीरो तक मर तो नहीं जाएगी पहले, पीछे लोग पड़े हुए, कोई पीछे नहीं पड़े, वो हीरोइन अपने घर में बैठी जूस पी रही है और वो जो पीछे भागने वाले वो लोग अपने घर में बैठे शराब पी रहे। लेकिन यहां इतना देखकर क्यों? अंधकार है। और जब वो अंधकार निकल जाता है व्यक्ति को पता चलता है सामने दीवार है, कुछ नहीं हो रहा था, कहां है हीरोइन, कहां है हीरो, कहां है घोड़े, कहां है कार, कुछ भी नहीं है वहां। इसी तरह जब जीवन में अज्ञान का अंधकार है, हमें ये जीवन बड़ा आकर्षक लगता है, बहुत अच्छा, बड़ा आनंद, कितना सुंदर है, कितना धन है, क्या है, ये सारा अंधकार में। लेकिन जब वो अज्ञान निकल जाता है तो वही चीजें सामने होती हैं, व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं होता। लाइट शुरू हो जाने के बाद सिनेमा थिएटर में, आप में से सब लोग गए होंगे सिनेमा थिएटर, शायद कोई भाग्यवान है जिसने सिनेमा थिएटर ही नहीं देखा। लाइट जब हो जाती है, वही व्यक्ति जो आंसू बहा रहा है, जो हंस रहा है, जो हो रहा है, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है, सामने दीवार है बस। इसी तरह जब ज्ञान हो जाता है कि ये जो शरीर है, ये 9 द्वारों 9 द्वारे पूरे देही, ये जो 9 द्वारों वाला शरीर है कुछ नहीं है, मल मूत्र से भरा हुआ एक थैला है, क्या आकर्षण होना उसके प्रति? अगर आकर्षित होना है तो आत्मा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, आत्मा के गुणों के प्रति आकर्षण होना चाहिए, शरीर के प्रति नहीं। तो नारद मुनि यही बात बताते हैं कि भक्ति से केवल ये अनासक्ति आ सकती है और इसलिए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। श्रीपद मध्वाचार्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, मध्वाचार्य जी ने जो कहा, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भक्ति का अभ्यास करता है, भक्ति में लगा रहता है, तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त करेगा, भले ही पहले कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो। बहुत स्पष्ट कहते हैं मध्वाचार्य जी। तो हम सबके लिए तो जरा आशा है ना, सब पीछे से पाप करके आए हैं तो हमारे लिए आशा है। वो कहते हैं कि कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर जीवन भर बस भगवान की भक्ति में लगा रहे, कृष्ण की भक्ति करता रहे, निश्चित मुक्त होगा। भगवद गीता में भी कहा गया है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। तो इसी तरह हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति बहुत शक्तिशाली है, आसक्ति इसी से जाएगी। नारद मुनि आगे कहते हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो आसक्त होता है शरीर से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, समाज से, ये उसकी आसक्ति होती है। भूल जाता है कि मल और मूत्र से भरा हुआ केवल थैला। अब देखिए, हमें जो चीज बड़ी आकर्षक, कोई शरीर आकर्षित लगता है, उसको काट दीजिए जरा सा उस शरीर को, या चलिए आपको किसी का चेहरा अच्छा लग रहा है उसको काट दीजिए, जरा सी एक 2 इंच चमड़ी निकाल दीजिए, सुंदर लगेगा। आप बोलोगे वाह, आलिंगन दूर देख कर ये कौन सामने, घृणा आएगी, भागेंगे हम लोग दूर। क्यों? वही व्यक्ति जिसकी केवल 1 इंच चमड़ी निकाल दीजिए, बस 1 इंच छोड़िए, आधा इंच निकाल दीजिए, कहां गई वो सुंदरता, कहां है वो सुंदरता। तो इसीलिए ये जानना चाहिए कि ये केवल पैकिंग है, पैकिंग पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि क्योंकि आसक्त रहता है, सदैव भय में रहता है, लेकिन वो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत का पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, अगर वो भी भयभीत रहता है, नारद मुनि कहते हैं कि वो भी अगर भयभीत है तो फिर क्या लाभ है उसकी भक्ति करने का। श्रम एव हि केवलम, नारद मुनि इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो केवल श्रम है। आप भक्ति कर रहे हो भगवान की, फिर भी डर है। क्या डर है? अरे अरे कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। मतलब भगवान की भक्ति नहीं, कृष्ण से आसक्ति नहीं है, कृष्ण पर विश्वास श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। भक्त के लिए क्या चिंता है मृत्यु के लिए? भक्त तैयार है, आज मृत्यु आए आ जाए। क्यों? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विचितु मानस राजहंस। मैं तो अभी तैयार हूं, राजा कुलशेखर कहते हैं, अभी मृत्यु आए। क्यों? पता नहीं बाद में क्या होगा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तय। तो भक्त घबराते नहीं मृत्यु से, भक्त घबराते नहीं जीवन की किसी अन्य वस्तु से, भक्त घबराते नहीं कोई नुकसान हो जाने से, भक्त घबराते हैं तो भक्तों का संग चले जाने से, भक्त घबराते हैं तो भक्तों के प्रति अपराध करने से, भक्त बाकी किसी चीज से नहीं घबराते, ये भक्त है। तो अगर हमें डरना है तो इस जगत की किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। क्या चला जाएगा, क्या आएगा? कई बार आप लोग दुकानों पे लिखा देखते हैं, वैसे भगवत गीता का वो सार नहीं है, लेकिन वो लोग लिख देते हैं, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है ना। गीता सार, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, क्या तुम्हारा था इत्यादि। तो ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ सही है, किस चीज से आ सकती, क्या था हमारा जन्म लिया हमने, जन्म हुआ, माँ बाप हो गए, बस ये मेरे 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 कहते कहते सब मेरा हो गया। क्या लाए थे? जन्म के समय लेकर आए थे करोड़ों रुपए साथ में, सोना लाए थे, क्या लाए थे? बिना वस्त्रों के आए थे, बिना वस्त्रों के जाने वाले, इसीलिए व्यक्ति को जलाने के समय उसके वस्त्र भी निकाल दिए जाते हैं, कफन चढ़ाया जाता है। किस चीज की आसक्ति? इस शरीर से आसक्ति, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई है नहीं, मैं बड़ा अच्छा दिखता हूँ, मैं बड़ा अच्छा बोलता हूँ, मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्या है शरीर में? भरा हुआ है मल मूत्र बस। तो इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति करके भी अगर भयभीत है व्यक्ति, श्रम एव हि केवलम, भक्ति के द्वारा अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। एक भक्त को कोई भय नहीं होना चाहिए, उसको
पूर्ण विश्वास के साथ हर चीज कृष्ण के लिए उसको करनी चाहिए, सारी सुविधा आएगी। प्रभुपाद लिखते हैं एक स्थान पर कि जब हम जप करते हैं तो ये जप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। अगर आप जप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करोगे, कृष्ण अपने आप आपके पास थोड़े से जो गंभीर भक्त हैं उनको भेज देंगे। चिंता नहीं करो, लोगों को आकर्षित करने के लिए जप मत करो। कभी कभी हम लोग करते हैं ना, बड़ा ध्यान पूर्वक देख रहे, चार पांच लोग देख रहे हैं तो और ध्यान बढ़ जाता है हमारा, कोई नहीं देख रहा है तो फिर ध्यान चला जाता है कि क्या ठीक है ना, जप हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई देख ही नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है। ज्यादातर कार्य हम लोग दिखाने के लिए करते हैं, है ना। जब बहुत भीड़ हो, उत्सव हो, तब हमें आरती करने का बड़ा उत्साह आता है, आगे सबके सामने मंदिर भरा हो तो आरती करने में आनंद आता है। क्यों? जब खाली हो, मंगल आरती के समय चार लोग खड़े हो, तब आनंद नहीं आता है। क्यों? हमने कई मंदिरों में देखा, कई मंदिरों में कहना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कई मंदिरों में कि वो उत्सवों के दिन आरती करने के लिए झगड़ा होता है, मैं आरती करूंगा, मैं करूंगा। अरे क्यों? क्योंकि उत्सवों के दिन हजारों लोग देखेंगे, ओ उनको लगता है पुजारी को कि लोग आपको देखने आए हैं। लोग भगवान को देखने आते हैं, लेकिन व्यक्ति को पूजा भक्ति में भी हम ज्यादातर चीजें दिखाने के लिए करते हैं। जब भीड़ हो तब ये करना है वो, ऑफकोर्स भीड़ होनी चाहिए, हम लोग तो बुलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग उत्सवों में लोगों को इसलिए नहीं बुलाते हैं कि भीड़ हो तो फिर सब आकर मेरा गुणगान करें। हम बुलाते हैं कि भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथा सुने, भगवान के लीलाओं का श्रवण हो, प्रसाद ग्रहण करें, ये उद्देश्य है उत्सव मनाने का। तो इस तरह से नारद मुनि ये समझा रहे हैं कि हमें भय नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि दिखाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए जप मत करो, जप करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे नारद मुनि ने प्रार्थनाएं की और अंत में नारद मुनि अपनी प्रार्थनाओं के भगवान से याचना करते हैं। भगवान से कहते हैं कि हम लोग बहुत आसक्त हैं। कौन कह रहे हैं? नारद मुनि। हम लोग सोचे होंगे कि नारद मुनि आसक्त हैं, हम लोग तो आसक्त नहीं है। नारद मुनि जैसे विरक्त व्यक्ति वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान में बहुत आसक्त हूँ इस जगत में, अपनी इंद्रियों से, अपने इंद्रियों के विषयों से, परिवार से, समाज से, प्रार्थना है आपसे हमें शक्ति दीजिए कि हम भक्ति कर सकें और भक्ति के द्वारा इस आसक्ति को निकाल सकें। बहुत सुंदर बात, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए जो नारद मुनि ने की। भगवान से अगर कुछ मांगना है तो ये मांगिए कि हमें शक्ति दीजिए हम भक्ति कर सकें, ताकि भक्ति के द्वारा हम अनासक्त हो सकें। भक्ति की शक्ति हर भक्त को मांगनी चाहिए, कृपा का भिक्षुक हर भक्त को बनना चाहिए। अगर भिक्षा मांगनी है, भीख मांगनी है, तो खड़े होकर मांगिए, कृष्ण के सामने दोनों हाथ फैलाकर कृपा की याचना कीजिए, कृपा का भिक्षुक बनिए। तो नारद मुनि याचना कर रहे हैं कि शक्ति दीजिए, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आप देंगे तो मैं भक्ति कर पाऊंगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमारी शक्ति नहीं है, आचार्यों की शक्ति है, कृष्ण की कृपा है। प्रभुपाद लिखते एक स्थान पर, कृष्ण की कृपा के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट उन्होंने एक जगह पे वो लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर है, कहीं पर भी जाकर केंद्र खोल सकता है और अच्छे से वो केंद्र बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा उस पर आएगी अगर वो गंभीर है भक्ति में, और कृष्ण की कृपा के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता, प्रभुपाद लिखते हैं। और अपने भजन में भी उन्होंने लिखा, जब जा रहे थे जलदूत में, उन्होंने यही लिखा कि मेरी क्या शक्ति है, आप दीजिए शक्ति को, आप देंगे तो आपकी शक्ति से इन लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं समझा सकता, आपकी शक्ति चाहिए। तो इस तरह नारद मुनि भी मांग रहे हैं, हम सबको हर रोज भगवान से इसको मांगना चाहिए। जब हम जप प्रारंभ करें, सुबह सुबह भगवान के दर्शन करें, भगवान को धन्यवाद दें कि आपने आज मुझे फिर दर्शन दिए अपने, और फिर भगवान से याचना करें कि मुझे शक्ति दीजिए मैं आपकी सेवा कर सकूं। बस जप के पहले भगवान से प्रार्थना करें, शक्ति दीजिए मैं आपका नाम ले सकूं। तो नारद मुनि ये हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। और उसके बाद फिर सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि ये भारतवर्ष में हो रहा है तो भारतवर्ष का थोड़ा गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि भारतवर्ष में कई नदियां हैं, बहुत सी नदियों का नाम वो लेते हैं कि कई नदियां हैं जहां पर लोग रहते हैं, इन नदियों के द्वारा ये पावन भूमि पावन होती है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें लोग अलग अलग वर्ण अलग अलग आश्रमों में हैं, लेकिन हर व्यक्ति गुणों के आधार पर कर्म के आधार पर यहाँ जन्म लेता है। भगवान भी कहते हैं ना गुण कर्म विभाग शह, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गुण गुण अर्थात प्रकृति के तीन गुण, तो गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर भारत भूमि में जन्म होता है। और वो कहते हैं कि बड़ी पावन भूमि है, कोई भी व्यक्ति इस भारत भूमि में रहकर भक्ति में लगकर अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं जो देवता हैं वे लोग भी भारत भूमि का गुणगान करते हैं। तो देवता कहते हैं कि कितना आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों को भारत भूमि में जन्म मिला है, और भारत भूमि में जन्म मिला है मतलब इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारी तपस्याएं की होंगी, यज्ञ किए होंगे, भगवान को प्रसन्न किया होगा, तभी आज भारत भूमि में जन्म मिला। देखिए भारत भूमि का जन्म कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग तो मच्छी खाकर और शराब पीकर उसको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन भारत भूमि में जन्म मिला है मतलब देवता कह रहे हैं। अब देवता जो कह रहे हैं वो तो ऐसे ही नहीं कहेंगे, देवता तो भूतकाल भविष्यकाल देख रहे हैं। तो देवता कह रहे हैं कि जिनका भी जन्म मनुष्य रूप में भारत भूमि में हुआ है, निश्चित यज्ञ कर चुके हैं, पहले तपस्याएं कर चुके हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर चुके हैं, तभी कृष्ण की कृपा हुई है कि उन्होंने भारत भूमि में उनको जन्म दिया है। और फिर वो कहते हैं कि देवताओं का जन्म भी ऐसे नहीं होता है, हमें जो ये पदवी मिली है, हमें जो ये पद मिला है, उसके लिए भी हमने बहुत सारी तपस्याएं करनी होती हैं, यज्ञ करना होता है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। देवता कहते हैं हमारी ये स्थिति का कोई उपयोग नहीं है, क्या लाभ है इसका, हम तपस्या करके देवता बन गए लेकिन क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से जाकर कार्य करना पड़ेगा, तो फिर इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत लंबा जीवन है देवता कहते हैं, लेकिन इस लंबे जीवन का कोई लाभ नहीं, क्योंकि हम लोग केवल भोग में लगे हैं, भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भारतवर्ष में छोटा जन्म भी ब्रह्मा जी के जन्म या ब्रह्म लोक में जन्म लेने से ज्यादा अच्छा। देखिए हम लोग सब स्वर्ग ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं ना, लोग मरने के बाद लिख देते हैं स्वर्गवासी कैलाशवासी इत्यादि। देवता कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है ब्रह्मलोक में भी आने की, भारत में छोटा सा जन्म मिला है आपको, थोड़े से वर्षों का, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी आसानी से भक्ति होती है। हम लोग सब बचपन से नाम सुन रहे हैं रामचंद्र जी कृष्ण का, भक्ति कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। तो देवता कहते हैं कि हमारे इस स्थिति का कोई उपयोग नहीं है। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो उस जगह में रहता है जहां भक्तों का संग है, कृष्ण की कथा है और भक्ति के उत्सव हैं। बहुत सुंदर बात देवता कह रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो है, हम लोग तो मूर्ख लोग हैं, देवता कह रहे हैं हम लोग तो मूर्ख हैं, जो हमने इतनी तपस्या करके स्वर्ग की कामना की और अब हम स्वर्ग में पड़े हुए भोग कर रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? इन तीन चीजों को जो ध्यान रखता है, वो वहां रहता है जहां भक्तों का संग है, वो वहां रहता है जहां कृष्ण की कथा की गंगा बह रही है। वो लोग तुलना करते हैं गंगा से, देवता कहते हैं जहां गंगा बह रही हो कृष्ण की कथाओं की और जहां उत्सव हो रहे हैं। अर्थात देवता हमें कह रहे हैं कि अपने जीवन को सफल बनाना है, इन तीन चीजों को कभी मत छोड़ना। भक्तों का संग, भक्तों के संग में तो निश्चित भक्ति करेंगे, भक्तों का संग नहीं छोड़ना, कृष्ण कथा के श्रवण को नहीं छोड़ना, उत्सव मनाने को नहीं छोड़ना। हमें बड़े उत्साह से उत्सव मनाने चाहिए। पुराणों में वर्णन है कि अगर भगवान के उत्सव हम मना सकते हैं, हमारी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन हम आलस के कारण या किसी और अन्य अरुचि के कारण, उत्साह ना होने के कारण अगर नहीं मनाते हैं तो एक अपराध है, इसको अपराध माना गया है। इसीलिए जितना हो सके हमें भगवान के उत्सवों को मनाने में अपना समय लगाना चाहिए, अपना धन लगाना चाहिए, अपनी शक्ति लगानी चाहिए, ताकि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो देवता कहते हैं कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेगा, वहाँ रहेगा जहाँ भगवान के भक्त हैं, वहाँ रहेगा जहाँ कृष्ण कथा की गंगा सतत बह रही है, और वहाँ रहेगा जहाँ उत्सव हो रहे हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं है, त्याग देना चाहिए उस स्थान को, कोई आवश्यकता नहीं है वहां रहने की। ये चीजें देवता कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं देवता कि अगर किसी ने भारत में जन्म ले लिया और भक्ति नहीं कर रहा, अभी तक तो उन्होंने गुणगान किया कि भारत में जन्म लेकर बड़ा अच्छा है, भक्ति होती है, लेकिन भारत में ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे। देवता कहते हैं उनका क्या स्थिति है, कौन है वो लोग? देवता कहते हैं कि जो भारत भूमि में जन्म लेकर भक्ति नहीं कर रहे हैं, पशु समान हैं। उन पशुओं की तरह जो जंगल में छोड़ दिए जाते हैं, उनको लगता है कि वो खुला घूम रहे हैं, लेकिन शिकारी आकर उनको मार देता। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है देवताओं ने, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देवताओं ने कहा कि जंगल में प्राणियों को छोड़ा जाता है, उनको लगता है हम स्वतंत्र हैं, हम घूमने लगते हैं, भागते हैं इधर उधर, लेकिन पीछे से शिकारी आता है, मार देता है। इसी तरह इस जगत के लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, कहते हैं हमें कोई नियम का पालन नहीं करना है, हमें बंधना नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे वैसे जिएंगे, जो चाहे वो खाएंगे, जो मन में आए वो करेंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। उस पशु की तरह हैं जिसको जंगल में स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कभी भी शिकारी आकर मार देगा। तो वो लोग जो भगवान के दूर जा रहे हैं, भगवान की शक्ति कभी भी उनका नाश कर सकती है। इसीलिए देवता कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेकर भक्ति करनी चाहिए। और फिर अंत में प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा भी अगर हमारे मृत्यु के समय थोड़ा सा पुण्य बचा रहे तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिले, ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें, भगवान की शरण जा सकें। देवता कहते हैं कि सच्ची शरण तो केवल भगवान प्रदान करते हैं, हम लोग तो सब उनकी शरण में जाना चाहते हैं। तो ऐसी प्रार्थना करके देवता ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अगला जन्म भारत भूमि में हो। प्रभुपाद समझा रहे हैं क्यों, क्योंकि भारत भूमि में, भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। चैतन्य महाप्रभु ने इसी भूमि में आकर संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ किया। देवताओं ने कहा कि जहाँ उत्सव हो, जहाँ यज्ञ हो, जहाँ भक्त हो, तो इस संकीर्तन यज्ञ को उन्होंने प्रारंभ किया। और इसलिए हम सबके लिए बहुत सुविधा है, भारत भूमि ते जन्म हैल जार। प्रभुपाद अभी हमने जो तात्पर्य पढ़ा उसमें कहते हैं कि भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवताओं से ज्यादा पुण्य करना पड़ता है। अर्थात देवता तो कोई भी बन सकता है पुण्य करके, लेकिन उनसे ज्यादा पुण्य करके भारत भूमि में जन्म मिलता है, और उससे भी ज्यादा अवसर मिलता है भगवान की भक्ति करने का। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि 84 लाख योनियों में ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव ब्रह्मांड में घूमता रहता है, लेकिन कोई भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। और फिर इनमें भी अलग अलग योनियों में घूमते हुए बहुत कम लोग, बहुत थोड़े लोग मनुष्य बनते हैं, और फिर मनुष्यों में भी बहुत कम लोग भक्त बनते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, मुक्त लोगों में, सिद्ध लोगों में नारायण परायण भगवान की भक्ति करने वाले बहुत दुर्लभ हैं। और इसी चीज को देवता कहते हैं, हमें समझा रहे हैं वो इन प्रार्थनाओं के द्वारा। मूर्खों, भारत भूमि में जन्म लिया है, भक्ति नहीं कर रहे हो, पशु हो, मारे जाओगे माया के द्वारा। इसीलिए भगवान की शरण आओ, समर्पण करो और अपने जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं?
आत्मा की भाषा और मन की भाषा कैसे पता चलता है?
आत्मा की भाषा को,
आत्मा की भाषा और मन की भाषा, इसमें क्या
हम अंतर क्या है,
कैसे पता चलता है ये मन की भाषा और आत्मा की?
बहुत अच्छा। हम कैसे भेद करें, क्योंकि हमारे मन में कुछ आता है तो ये हमारा मन हमें कह रहा है या ये आत्मा हमें कह रही है, राइट? या आत्मा का विचार है या हमारा विचार है, तो कैसे हमें समझना चाहिए? बहुत सरल है। हमारा जो मन है, जब तक दूषित रहता है, बद्ध रहता है, जो भी मन में विचार आ रहे हैं, अगर वो कृष्ण भक्ति के परे हैं, कृष्ण भक्ति के विरुद्ध हैं, भले इस जगत के बड़े अच्छे विचार हों, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति के विरुद्ध हैं तो वो मन के विचार हैं। अगर हमें भोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इच्छा आ रही है, आनंद लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, भक्ति में अरुचि के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्या रोज वही जप करते रहते हो हरे कृष्णा, कुछ नया ढूंढो, कोई नया मंत्र ढूंढो, ये मन के विचार हैं। लेकिन जब हमारे मन में भक्ति के विचार आते हैं कि मुझे कृष्ण को समर्पण करना है, ये आत्मा का विचार है। क्यों? क्योंकि आत्मा केवल कृष्ण भक्ति से संबंधित विचार कर सकती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही वही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जहां भक्ति, जहां कृष्ण समर्पण की बात आती है, ये आत्मा की इच्छाएं प्रकट हो रही है। लेकिन जहां भोग करने की, विलास करने की, दूर जाने की कृष्ण से बातें आती हैं, वो मन की बात है। तो अगर हमें भेद करना है तो उसके लिए हमें पहले शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाए कि जो विचार मन में आए हम उसको भेद कर सकें। क्योंकि भेद करने के लिए आधार चाहिए। जैसे आपको अगर कुछ चीज़ दी जाए, मान लीजिए आपको कुछ नोटों का बंडल दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से 500 वाले नोट सब निकाल कर फेंक दो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि 500 किसको कहते हैं, 500 का नोट कौन सा है। पता ही नहीं होगा तो आप निकालोगे कैसे? तो इसलिए जब भेद करना होता है, ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान के आधार पर हम भेद करते हैं। इसीलिए पहले शास्त्र का श्रवण होना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि जब कोई आकर्षण, जब कोई विरोधी चीज़ें हमारे सामने आए, हम भेद कर सकें कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये जो कह रहा है केवल मन मुझे भ्रमित कर रहा है, ये मेरे लिए आवश्यक नहीं। तो इसलिए ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को हमें तीव्र कर लेना चाहिए। ठीक है? यस।
भगवत की संबंध तो लोग
हाँ, कर्ता कौन है? शास्त्रों में तीन प्रकार के कर्ता को कहा गया है कि तीनों कार्य करते हैं और तीनों कार्य नहीं करते। तीन ही चीज हैं जो कार्य कर सकती हैं, प्रकृति, भगवान और जीव। इनके अलावा तो और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इन तीनों को आचार्यों ने समझाया कि तीनों काम करते हैं और तीनों काम नहीं करते। कैसे? उसको बताया। तो एक साधारण भाषा में अगर आपको समझाएं तो जो ये कार्य करने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार होती है कि जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं और प्रकृति उसको कार्यान्वित करती है। जीव ने इच्छा की, जीव कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जीव भौतिक जगत में कुछ नहीं करता, उसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वो इच्छा कर लेता है क्योंकि उसका अभी चेतना आवृत्त है, आवृत्तम ज्ञानम एतेना, तो ज्ञान आवृत्त है इसलिए वो गलत इच्छा करता। अनुमति भगवान देते हैं और कार्य प्रकृति करती है। तो फिर जब गलत कार्य होता है तो उसका दंड किसको मिलना चाहिए? जीव ने तो किया नहीं कार्य, है ना, फिर दंड क्यों मिले उसको? जिसने किया उसको मिले, प्रकृति को? प्रकृति को दंड नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति केवल भगवान के आदेश का पालन करती है और भगवान के आदेश का पालन करना धर्म है। तो प्रकृति केवल भगवान के आदेश, अपनी इच्छा से प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये जान लीजिए। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में स्वतंत्र नहीं है प्रकृति। तो जब स्वतंत्र नहीं है तो जो भी करती है उसको उसको कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो केवल भगवान के आदेश का पालन कर रही है। तो इसलिए प्रकृति को कोई दंड नहीं मिलता। दूसरे हुए भगवान, क्योंकि उन्होंने अनुमति दी, दंड भी उन्हें मिलना चाहिए। भगवान को दंड नहीं मिलता क्योंकि वो गुणातीत हैं, वो इस जगत से उनको क्या लेना देना, इसलिए भगवान को नहीं मिलता। तो बचा कौन? दंड किसको मिलेगा? जीव को भी दंड नहीं मिलता। एक दृष्टि से हम तो केवल दंड का अनुभव करते हैं क्योंकि हम इस शरीर से अपने आप को संबंधित मानते हैं। जो व्यक्ति इस शरीर के परे चला जाता है उसको इस सारे भौतिक जगत का दंड दंड नहीं रह जाता उसके लिए। उसके लिए तो कुछ लेना देना नहीं, वो शरीर से परे है। माधवेंद्रपुरी किसी ने लाकर दे दिया तो खाए, नहीं तो कई दिनों तक भूखे हैं, कोई फर्क नहीं उनको, कृष्ण भक्ति में इतना रमे हुए हैं वो, क्योंकि परे चले गए। तो उनको ये नहीं लगता कितना दंड हो रहा है, तीन दिन से कुछ खाने को नहीं मिला, मंदिर में रह रहे हैं, उपवास करना पड़ेगा, ये वो, कोई दंड नहीं उनके लिए। क्या है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि जीव इच्छा करता है वो कष्ट भोगता है, लेकिन प्रकृति कष्ट नहीं भोग सकती क्योंकि एक दृष्टि में प्रकृति केवल, प्रकृति जड़ है और केवल कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है। कृष्ण इन सब नियमों के परे हैं इसलिए उनको कोई दंड नहीं। तो फिर भौतिक जगत में इच्छा करने के कारण ही, इसीलिए इच्छा से हम अपने अस्तित्व को बदल सकते हैं, इच्छा से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इच्छा करेंगे तब सारी चीजें बदलेंगे, हम इच्छा ही नहीं करते वही तकलीफ है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यस प्रभु, योर क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न से है कि देवताओं के पास अगर ज्यादा योग्यता नहीं है तो फिर वो कैसे दंड देते हैं? हमने सुना वो वहां से फेंक देते हैं, मनुष्य बना देते हैं, मनुष्यों को कुछ चीजें प्रदान करते हैं, वर्षा इत्यादि, ये सब तो उनके अधिकार में है। तो फिर हम लोगों से वो श्रेष्ठ हैं, स्वाभाविक है ना। हम तो वर्षा नहीं ला सकते कि हमने हाथ घुमाया वर्षा आ गई, इंद्र कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। गोवर्धन लीला में उन्होंने सारे हेवी संवर्तक बादलों को ले आए, तो फिर हमसे तो वो श्रेष्ठ हैं, ऐसा क्यों कहा गया? भक्ति की दृष्टि से वो श्रेष्ठ नहीं। यहाँ जो कहा गया प्रभुपाद ने कि देवताओं से ज्यादा पुण्य करना पड़ता है भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, वो इसलिए कहा क्योंकि देवता जब बनते हैं तो वो एक भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि केवल मनुष्य शरीर में इस पृथ्वी पर होता है, देवताओं की भोग योनि है कि उन्होंने अपना कर्म कर लिया, अब केवल भोग करेंगे वहां पर। लेकिन अगर उन्हें भक्ति करनी है, यानी कर्म के भोगने से परे जाना है, ये सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं, वर्षा दे देना इत्यादि, ये तो भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है कि ठीक है आप करो काम करो। जैसे उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा अमीर आदमी है, अब उसके पास उसने नौकर रखे हुए हैं और उनके नौकरों को बड़ी शक्ति है क्योंकि उनके नौकर साइन करते हैं चेक तब पैसा मिलता है, बराबर है, पैसा नहीं मिलेगा अगर उनका अकाउंटेंट साइन नहीं करेगा या कुछ और चीज़ें, घर में होते हैं नौकर। लेकिन इन नौकरों से छोटा बच्चा उसका, जो हालांकि छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को पैसा वो नौकर देगा, उसके पास अधिकार है देने का, स्कूल लेके जाने का अधिकार उसको है, मालिक ने कहा है तुम ये करना। लेकिन मालिक को अपना बच्चा ज्यादा प्रिय है या वो नौकर? भले वो नौकर पैसा दे रहा है, लाखों रुपया दे रहा है चेक से बैंक से निकाल के, पैसा किसका है? मालिक का। और उसका अधिकार किस पर है, किसको है? बच्चे को। ये नौकर तो केवल बीच में है, तो लगता है कि नौकर कंट्रोल कर रहा है, बराबर, जब तक वो साइन नहीं करके देगा, अकाउंट से पैसा नहीं निकले, ये तो लग रहा है, लेकिन है किसका? उसका। और उसका अधिकार किसको है? बच्चे को। तो इसी तरह जो भक्त है वो भगवान के बच्चों के समान है, जिनको भगवान अपना सारा कुछ देने वाले हैं, जो अधिकार है। और ये जो देवता हैं ये अकाउंट्स वगैरह रखने वाले हैं, तो दिख रहा है कि वो कर रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन असली अधिकार उसका। इसलिए योग्यता ज्यादा बच्चे की है, उस नौकर की नहीं है। किसकी दृष्टि में? स्वामी की दृष्टि में। तो हम लोग जहाँ जिस योग्यता की बात कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि में कौन ज्यादा योग्य है, देवता या वो साधारण मनुष्य जो भले ही देवताओं के नियंत्रण में है लेकिन भक्ति कर उनसे ऊपर चला जाता है। जब पृथु महाराज इस पृथ्वी को छोड़कर भगवान के धाम जा रहे थे अपनी पत्नी अर्ची देवी के साथ, तो सारे देवता और देवियां देखकर धिक्कार रहे थे अपने ऊपर कि क्या फायदा है हमारे इस देव जीवन का, ये देखो मनुष्य बने और सीधा ऊपर चले गए। तो ये योग्यता ज्यादा है, इसीलिए कहा गया कि ज्यादा पुण्य करने पड़ते हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए, क्योंकि वहां से बड़ा सरल है कि हम सर्वोच्च धाम को पहुंच सकते हैं। ठीक है, और कोई उदाहरण, कोई प्रश्न? सॉरी, यस।
मनुष्य को पाप छोड़कर अन्य देश में जन्म लिया तो उनको भक्ति करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है?
भक्ति करने का अवसर मिलता है या नहीं?
स्ट्रगल करना पड़ता है,
निश्चित स्ट्रगल करना पड़ता है, मिलती है। ऐसा नहीं है कि उन्हें, आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद ने जाकर दुनिया भर के लोगों को भक्त बनाया, लेकिन उनको बहुत आज भी वो लोग संघर्ष करते हैं। उसका कारण क्या है? पहला कारण उनका कल्चर, जो बचपन से उन्हें मिला है उसको त्यागना बड़ा कठिन हो जाता है, भक्ति में आकर भी वो बना रहता। जैसे पाश्चात्य जगत में लोगों के लिए खाना पीना इधर उधर के काम करना वो सब तो स्वाभाविक है, मतलब वहां जाकर अगर आप लोग कहो कि नॉनवेज नहीं खाना है तो वो लोग क्यों नहीं खाना, और आपको कृष्ण ने कहा बोले तो आप मत खाओ, कृष्ण ने कहा है। तो वहां जब प्रभुपाद जा रहे थे अमेरिका तो उनको कहा था स्वामी जी दो चीजें मत बोलना जाकर वहां पर, नॉनवेज मत खाओ और अवैध संग मत करो, ये बोलोगे तो लोग भगा देंगे, और स्वामी जी ने जाके वही बोला ये बंद करो। तो खैर पाश्चात्य जगत में क्योंकि उनके ऊपर वो अपने कल्चर के सभ्यता के प्रभाव रहते हैं जो उन्होंने बचपन से किया है, इसीलिए भक्ति को बड़ी गंभीरता से स्वीकार करना उनके लिए कभी कभी कठिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर सकते, कई ऐसे इस्कॉन में भक्त हैं जो पाश्चात्य जगत के हैं, भारतीयों से कई आगे हैं भक्ति में, तो वो तो कृपा के ऊपर है, भगवान की प्रभुपाद की या आचार्यों की कृपा हुई है, लेकिन फिर भी उनके लिए कठिन हो जाता है उन लोगों के लिए भक्ति को सहज स्वीकार करना, क्योंकि जिस प्रकार का उनका जीवन है उन्होंने कभी बचपन से श्रवण नहीं किया, नाम नहीं सुना राम कृष्ण इत्यादि, तो वो पवित्रता नहीं है। उस कारण से भक्ति को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता। लेकिन भारतवर्ष में बड़ा सरल है। अभी देखिए, हम लोग पाश्चात्य जगत या बाहर के देशों में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट सब, आते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप कीजिए तो बहुत लोग आएंगे। उनकी पवित्रता है, उनको भगवान के नाम सुनने में रुचि है, कम से कम थोड़ा बहुत प्रेम है भगवान से, वो वहाँ पर नहीं। तो इसीलिए बहुत कठिन होता है उनके लिए भक्ति। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।